आगे सबक देखिए भाई, वलौ काला अंति तालिकुन अला अल्फिन अला अन्नी बिल खियारी औ अला अन्नक बिल खियारी सलासत अय्यामिन फकबिलत फल खियार बातिलुन इदा कान लिज़ौज وهو جائز اذا كان للمراه فان ردت الخيار في الثلاث بطل وان لم ترد طلقت ولزمها الالف وهذا عند ابي حنيفه رحمه الله وقال الخيار باطل في الوجهين والطلاق واقع وعليها الف درهم. گزشتہ سبق میں خلع کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے بھائی. साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि खुला के अंदर औरत इवज देकर खावंद से अपनी जान छुड़ाती है, तो अगर ये नफरत जो है वो खावंद की जानिब से थी तो उसके लिए तलाक का इवज लेना मकरूह है भाई, और अगर औरत की तरफ से नफरत और नाफरमानी है तो फिर इस सूरत में भी महर के बकदर खावंद वापस ले सकता है और उससे जायद लेना मकरूह है भाई. और उसके बाद फिर साहिब हिदाया ने तलाक अला इवज को भी जिक्र फरमाया. मैंने बतलाया था कि खुला और चीज है, तलाक अला इवज और चीज है. खुला में तलाक का लफ्ज नहीं होगा जबकि तलाक अला इवज में तलाक का लफ्ज होगा, और अलबत्ता दोनों इस एतबार से मुश्तरक हैं कि दोनों का हुक्म तलाक बाइन है. जब औरत जुदाई के इवज माल देगी तो वहां तलाक बाइन आएगी, इसलिए क्योंकि तलाक बाइन के जरिए औरत की जान उस खावंद से छूट रही है. लेकिन अगर तलाक बाइन के बजाय तलाक रजई करार दिया जाए तो उसके अंदर तो औरत की जान खावंद से नहीं छूटती, खावंद उसमें रुजू कर सकता है. और अगर खावंद ने बीवी को माल की शर्त पर तलाक दी और तो औरत ने कबूल कर लिया तो तलाक वाके हो जाएगी और औरत पर माल लाजिम हो जाएगा और तलाक भी तलाक बाइन होगी. तो देखो यहां पर औरत का कबूल करना जरूरी है, तो वजह यह है कि खावंद माल के इवज तलाक दे रहा है तो औरत पर माल लाजिम होगा और किसी पर उसकी रजामंदी के बगैर माल लाजिम नहीं किया जा सकता. तो औरत कबूल करेगी तो शर्त पूरी हो गई, जब शर्त पूरी हो गई यानी उसके इवज माल आ गया, और जब माल आ गया तो अब तलाक भी वाके हो जाएगी और तलाक बाइन होगी क्योंकि औरत ने इवज दिया है भाई. और अगर खुला के अंदर इवज बातिल हो गया, मसलन शराब या खिंजीर पर या मुर्दार पर खुला किया है, तो इस सूरत में खावन को कुछ नहीं मिलेगा, अलबत्ता तलाक वाके हो जाएगी और तलाक भी तलाक बाइन होगी क्योंकि खुला का लफ्ज किनाया है और तीन किनायात के अलावा बाकी तमाम मशहूर किनायात से तलाक बाइन होती है. और अगर तलाक आला इवज के अंदर इवज जो है वो बातिल हो जाए तो फिर वहां तलाक रजई होगी क्योंकि वहां तलाक का लफ्ज मौजूद है, और जब इवज बातिल हो गया और तलाक का लफ्ज बाकी रह गया तो उस तो वो तो सरीह है और लफ्ज सरीह के जरिए तलाक रजई होती है. लेकिन अगर इसके मुकाबले में आका ने गुलाम को मुकातब बनाया और इवज शराब या खिंजीर या मुर्दार जिक्र किया, या इसी तरह शराब या खिंजीर या मुर्दार के इवज पर गुलाम को आजाद किया, तो इन तमाम सूरतों के अंदर गुलाम वैसे नहीं आजाद होगा या वैसे नहीं मुकातब बनेगा बल्कि उसको अपनी कीमत अदा करना पड़ेगी. तो खुला और तलाक अला इवज वहां पर खावंद पर कुछ नहीं आता था, लेकिन मुकातब बनाने में या एताक अला इवज की सूरत में गुलाम पर उसकी कीमत आएगी. वजह यह कि खुला के अंदर जो है बुज़ा मिल्कियत से निकल रहा है और बुज़ा मिल्कियत से निकलते हुए मुतकव्विम नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है, लिहाजा जब कीमत नहीं है तो इवज बातिल हो गया तो लिहाजा वहां कोई माल भी नहीं आएगा. जबकि गुलाम जो है, गुलाम जिसको आका मुकातब बना रहा है या उसको माल के शर्त पर आजाद कर रहा है तो वो तो माल मुतकविम है भाई, और आका उसके मुफ्त हाथ से निकलने पर राजी नहीं है भाई, तो वहां उस गुलाम को अपनी कीमत देना पड़ेगी. और फिर साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि जो बुज़ा है यह मिल्कियत से निकलते हुए गैर मुतकविम है, यानी कीमत वाली चीज नहीं है, लेकिन यही बुज़ा जब मिल्कियत के अंदर दाखिल हो तो फिर यह मुतकविम है, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाते हैं अंतब तहू भी अमवालिकुम, कि तुम बीवियों को तलाश करो अपने मालों के जरिए। तो मालूम है माल यानी महर जरूर देना पड़ेगा भाई। और फिर उसकी अकली वजह भी साहिब हिदाया ने जिक्र फरमाई कि यह बुज़ा मिल्कियत में दाखिल होते वक्त मुतकविम क्यों है, तो वजह जिक्र की कि वजह यह है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, इंसान मुअज्जज है, और जब इंसान मुअज्जज है तो तमाम इंसानी आज़ा भी मुअज्जज हुए, तो बुज़ा भी एक इंसानी उज़्व है, वो भी मुअज्जज है। तो शरीयत ने वहां माल वाजिब किया है कि ये मुअज्जज चीज है, ये तुम्हारे लिए वैसे हलाल नहीं होगी बल्कि तुम्हें माल खर्च करना पड़ेगा। और जबकि बुज़ा मिल्कियत से निकलते वक्त वो मुतकविम नहीं, कीमत वाला नहीं, वजह यह कि वहां इस्कात मिल्कियत है, और इस्कात मिल्कियत यह खुद एक मुअज्जज अमल है। यहां किसी माल को वाजिब करके इस अमल के मुअज्जज होने का इजहार करने की कोई जरूरत नहीं है। इस्कात मिल्कियत खुद ही एक मुअज्जज अमल है, क्योंकि इसकी वजह से बुज़ा से ममलूकियत खत्म हो जाएगी। तो लिहाजा जब यह खुद मुअज्जज अमल है तो यहां माल के जरिए इसके मुअज्जज होने को जाहिर करने की कोई हाजत और जरूरत नहीं है भाई। और फिर साहिब हिदाय ने यह भी बतलाया कि जो चीज महर बन सकती है वह खुला के अंदर बदल भी बन सकती है, लेकिन जो भी खुला के अंदर बदल बने वो उसका महर बनना जरूरी नहीं, इसलिए क्योंकि खुला का बदल तो 5 दिरहम भी हो सकते हैं लेकिन महर तो 10 दिरहम से कम नहीं हो सकता। और वजह भी जिक्र की साहिब हिदाया ने कि महर जो है वो बुज़ा के मिल्कियत में दाखिल होते वक्त देना पड़ता है, और मिल्कियत में दाखिल होते वक्त तो बुज़ा मुतकविम है, तो महर इवज है एक मुतकविम चीज का, तो जब महर मुतकविम चीज का इवज है तो गैर मुतकविम का ये बतरीके औला जो है इवज हो सकता है भाई, क्योंकि बुज़ा खुरूज के वक्त गैर मुतकविम है तो ये उसका इवज बतरीके औला हो सकता है। फिर उसके बाद साहिब हिदाया ने बतलाया कि अगर औरत ने खावन से कहा कि मुझसे खुला कर लो उस चीज पर जो मेरे हाथ में है, और मुट्ठी आगे कर दी, मुट्ठी बंद है, तो खावन ने कबूल कर लिया और औरत ने मुट्ठी खोली तो उसमें कुछ भी नहीं था, तो इस सूरत में खुला हो गया, औरत को तलाके बाइन हो गई और खावन के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि औरत ने खावन को कोई धोखा नहीं दिया, क्योंकि बच्चा भी जानता है कि हो सकता है मुट्ठी में कोई चीज हो सकता है कोई चीज ना हो भाई। लेकिन इसके बजाय अगर औरत ने माल के लफ्ज को जिक्र किया कि तुम मुझसे खुला कर लो उस माल के इवज में जो मेरी मुट्ठी में है, और खामद राजी हुआ और फिर देखा गया तो मुट्ठी में कुछ भी नहीं था, तो अब माल का लफ्ज जिक्र कर उसने खावंद को धोखा दिया है, लिहाजा माल तो जरूर आएगा, अब क्या माल वाजिब करें? कहते हैं जो जिक्र किया वो तो आ नहीं सकता क्योंकि मुट्ठी में कुछ था ही नहीं, तो फिर यही फैसला किया जाएगा कि खावंद ने जो इसको महर दिया था वो महर इसको लौटाना पड़ेगा भाई। और अगर औरत ने खावंद से कहा कि मेरी मुट्ठी में जो दिरहम है उनके इवज मेरे साथ खुला कर लो, और मुट्ठी में कुछ भी नहीं था, तो उसने जमा का लफ्ज जिक्र किया है, चाहे मुआरफ बिल्लाम हो चाहे गैर मुआरफ बिल्लाम हो, दोनों का एक ही हुक्म है कि औरत पर 3 दिरहम वाजिब होंगे, क्योंकि जमा का इतलाक कम से कम 3 अफराद पर होता है। और अगर औरत ने खावन से खुला किया ये उसका एक गुलाम है जो भागा हुआ है कि इस गुलाम के इवज मेरे साथ खुला कर लो, अगर ये आ गया तो मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगी, ये तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन अगर वो मुझे न मिला तो फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी, मेरे ऊपर कोई जमान नहीं आएगा, और खावंद राजी हो गया तो कहते हैं औरत जमान से बरी नहीं होगी, अगर गुलाम आया तो वही देना पड़ेगा, और अगर गुलाम न मिल सका तो फिर उसकी कीमत देना पड़ेगी। वजह यह कि यह अक़्द मुआवजा है भाई, और अक़्द मुआवजा के अंदर मुआवजे का सलामत रहना जरूरी है भाई, उसमें जमान से कोई शख्स बरी नहीं हो सकता। हां अलबत्ता यह शर्त फासिद लगाई थी कि मैं जमान से बरी होंगी, लेकिन शर्त फासिद से खुला और निकाह फासिद नहीं होते, शर्त फासिद हो जाती है और खुला और निकाह सही हो जाते हैं, जबकि बैअ और इजारा जो हैं वो शर्त फासिद से फासिद हो जाते हैं। और अगर बीवी ने खावन से कहा कि मुझे 3 तलाकें दे दो 1,000 के बदले, और खावन ने 1 तलाक दे दी, तो इस सूरत में औरत पर सुलु से अल्फ आ जाएगा यानी हजार का तीसरा हिस्सा, और औरत जो है जुदा हो जाएगी। इसलिए क्योंकि औरत जुदाई के लिए हजार देने पर राजी है, तो हजार का तीसरा हिस्सा देने पर बतरीके औला राजी होगी भाई। और फिर यहां जाब्ता भी बतलाया था साहिब हिदाया ने कि मुआवज में तकसीम आए तो आईवज में भी तकसीम आएगी। तीन तलाकों का आईवज जो है वो हजार दिरहम थे, तो एक तलाक का आईवज हजार का तीसरा हिस्सा होगा। तो इस मसले के अंदर औरत ने बा का लफ्ज जिक्र किया था, तल्लिकनी सलासन बी अल्फिन, और अगर औरत आला जिक्र करे तो आला शर्त के लिए आता है। तो और फिर इस सूरत में अगर खावंद एक तलाक देगा तो फिर इस सूरत में औरत पर कोई माल नहीं आएगा और तलाक भी रजई होगी इमाम साहिब के नजदीक, इसलिए क्योंकि आला शर्त के लिए आता है और शर्त में तकसीम आए तो मशरूत तकसीम नहीं होगा। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि यहां पर भी जो आला आया है वो बा के माना में है, इसलिए क्योंकि अरब जब किसी से कहते हैं इहमिल हादत तआमा बिदिरहमिन या इहमिल हादत तआमा अला दिरहमिन, तो दोनों का एक ही माना होता है, चाहे बिदिरहमिन कहें चाहे अला दिरहमिन कहें, और ये आला जो है ये उसी बा के माना में होता है। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि नहीं, कि यह आला शर्त के लिए है, इसलिए क्योंकि आला असल में लुजूम के लिए आता है और इसको मजाजन शर्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि शर्त के साथ भी जजा लाजिम होती है भाई। और जब यह शर्त है तो शर्त में तकसीम से मशरूत में तकसीम लाजिम नहीं आएगी भाई। और बाकी उसका भी जवाब दिया कि वहां इहमिल हादत ताम अला दिरहमीन, यहां पर अला को बा के माना में लेना पड़ा, इसलिए क्योंकि ये इजारे की बात हो रही है और इजारा और बै जो है वो तो तालिक को कबूल नहीं करते, जबकि ये जो मसला चल रहा है ये तलाक का है और तलाक तो तालिक को कबूल कर लेती है भाई। और अगर खावन ने बीवी से कहा कि तू अपने आप को तीन तलाके दे दे बी अल्फिन हजार के बदले में औ अला अल्फिन या एक हजार की शर्त पर, चाहे बा जिक्र करे चाहे अला जिक्र करे, तो इस सूरत में अगर औरत अपने आप को एक तलाक देगी तो वो वाकई ही नहीं होगी। तो यहां हम ये नहीं कहेंगे कि तलाकों में तकसीम आई है तो अइवज में भी तकसीम आ जाएगी, वजह यह कि यहां यह बात करने वाला खावंद है और खावंद जो है वो बाय के दर्जे में है और बाय समन से कम के अंदर मबिया हवाले करने पर राजी नहीं होता भाई। या इसी तरह खावन ने बीवी से कहा अंति तालिकुन अला अल्फिन या अंति तालिकुन बी अल्फिन, तो यहां औरत कबूल करेगी तो तलाक हो जाएगी। वजह यह कि इसके अंदर चाहे बा को वो जिक्र करे चाहे अला को जिक्र करे, यहां औरत का इसे कबूल करना जरूरी है क्योंकि खावंद औरत की मर्जी के बगैर उस पर माल को लाजिम नहीं कर सकता। जब वो कबूल कर लेगी तो माल उस पर लाजिम हो गया और साथ ही तलाक वाकई हो जाएगी भाई। और फिर अगर खावंद ने बीवी से यह कहा अंति तालिकुं व अलैकी अल्फुन या गुलाम से कहा अंत हुर्रुन व अलैका अल्फुन, तो इवज को अलग जुमले में जिक्र किया, तो इस सूरत में इमाम साहब फरमाते हैं अंति तालिकुन से तलाक हो जाएगी और वा अलै की अल्फुन इसको के खावंद उस पर हजार लाजिम कर रहा है, लेकिन किसी के लाजिम करने से तो दूसरे पर माल लाजिम नहीं होता, तो औरत कबूल करे या ना करे तलाक हो जाएगी क्योंकि खावंद ने अंति तालिकुन कहा है। और गुलाम आजाद हो जाएगा इसलिए क्योंकि आका ने अंतहुर्रुन कहा है भाई, और माल लाजिम नहीं होगा। अगर ये कबूल भी कर लें तो ज्यादा से ज्यादा माल का वादा है और वादा करने से किसी पर शरान कोई माल लाजिम नहीं होता भाई। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि इन दोनों सूरतों में अगर गुलाम या औरत कबूल करेंगे तो तलाक और आजादी वाकई होगी और उन पर माल लाजिम होगा, और अगर वो कबूल नहीं करेंगे तो तलाक या आजादी भी वाकई नहीं होगी और उन पर माल भी लाजिम नहीं होगा। वजह यह कि वो फरमाते हैं कि इस तरह का कलाम मुआवजात में जिक्र किया जाता है, जैसे अरबी में कहते हैं इहमिल हादल मताआ वलका दिरहमुन, तो ये सामान उठा ले इस हाल में कि तुम्हारे लिए एक दिरहम है, तो ये दूसरा जुमला हाल बनता है और हाल भी शर्त के दर्जे में होता है। तो यहां पर भी गोया खावन आजादी या तलाक को हजार के इवज पर मुअल्लक कर रहा है भाई। और उसमें बीवी या गुलाम का कबूल करना जरूरी है भाई। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं नहीं, ये अब अलई की अल्फुन या अब अलई का अल्फुन ये अलग जुमला है, ये माकबल से जुड़ने का मोहताज नहीं, क्योंकि ये जुमला है और जुमला मुस्तकिल होता है, वो किसी से जुड़ने का मोहताज नहीं, इल्ला ये कि वहां कोई दलील पाई जाए भाई, वहां पर कोई दलील पाई जाए। और आजादी और तलाक ये तो माल से जुदा भी हो जाते हैं, ये तो माल से जुदा भी हो जाते हैं, तलाक भी बगैर माल के हो जाती है और आजादी भी बगैर माल के हो सकती है। लेकिन जबकि इसके मुकाबले में आपने जो मिसाल जिक्र की, आपने जो मिसाल जिक्र की इहमिल हादल मता वलका दिरहमुन, इसके अंदर ये इजारा जिक्र हो रहा है और इजारा और बैअ ये तो माल से जुदा नहीं हो सकते। तो ये जो अक़्दे इजारा या अक़्दे बैअ है ये दलील है कि ये जो आगे जिक्र किया जा रहा है ये इसका माकबल से रबत है। जबकि आजादी और तलाक जो है वो तो उनके साथ तो माल जरूरी नहीं, तो वहां कोई दलील नहीं है कि माबाद वाले जुमले को माकबल से हाल बनाया जाए भाई। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। वलौ काला अंति तालिकुन अला अल्फिन अला अन्नी बिलखियारी औ अला अन्नकि बिलखियारी सलासत अय्याम। भाई आपको मैंने बतलाया था कि बैअ के अंदर बाज़ औकात बाय या मुश्तरी अपने लिए बैअ को फसख करने का इख्तियार रख लेता है, इसको खियारे शर्त कहते हैं। मसलन एक शख्स आपके पास आया और आपको मजबूर किया कि मुझसे ये गाड़ी खरीद लें, मैं आपको कम कीमत पर दे दूंगा। तो आप कहते हैं कि भाई मुझे तो गाड़ियों की कोई खास पहचान नहीं है, मैं आपसे गाड़ी खरीद लेता हूं, लेकिन शर्त यह है कि मुझे 3 दिन का इख्तियार होगा, मैं अपने साथियों से मशवरा करूंगा, अगर यह बैअ मेरे फायदे की हुई तो मैं बैअ को बरकरार रखूंगा, और अगर मेरे फायदे की न हुई तो फिर मैं इस बैअ को फसख कर दूंगा। तो देखो यहां पर मुश्तरी अपने लिए खियार रख रहा है बैअ को फसख करने का। इसी तरह कभी यह खियार बाय रख लेता है तो इसको खियारे शर्त कहते हैं, और यह किस लिए होता है? उस आकद को फसख करने के लिए। किसको? उस आकद को फसख करने के लिए होता है, और यह ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो उस मुद्दत के अंदर अगर खियार इस्तेमाल करते हुए बैअ को फसख कर दिया तो बैअ फसख हो जाएगी, और अगर बैअ फसख न की तो मुद्दत गुजरने के बाद बैअ लाजिम हो जाएगी। बात समझ में आ गई, फिर उसको फसख नहीं किया जा सकता। अब सूरत मसला यह, खावन ने बीवी से कहा अंति तालिकुन अला अल्फिन अला अन्नी बिलखियारी सलासत अयामीन, कि तुझे तलाक है 1000 की शर्त पर, और साथ ये शर्त है कि मुझे 3 दिन का इख्तियार होगा, मैं चाहूं तो इस तलाक को फसख कर सकता हूं। और या दूसरी सूरत यह है कि बीवी के खियार को जिक्र करता है खावन, यूं कहता है कि तुझे तलाक है 1000 की शर्त पर, और साथ यह शर्त है कि तुझे इख्तियार होगा 3 दिन का। तो देखो औरत के खियार को जिक्र कर रहा है, और फिर औरत ने इसको कबूल कर लिया। तो इस सूरत में साहिबैन फरमाते हैं कि दोनों सूरतों के अंदर खियार जो है वो बातिल हो जाएगा, और औरत ने कबूल किया है तो तलाक वाक़े हो जाएगी और उस पर 1000 दिरहम भी लाजिम हो जाएंगे, क्योंकि खावंद ने 1000 दिरहम की शर्त पर तलाक दी थी और औरत ने उसको कबूल कर लिया, और बाकी खियार बातिल हो जाएगा। भाई खियार क्यों बातिल होगा? कहते हैं वजह यह कि खावंद ने तलाक को मुअल्लक किया है 1000 की शर्त पर, 1000 दिरहम की शर्त पर। तो जब औरत कबूल कर लेगी, तो जब औरत कबूल कर लेगी तो उस पर ये 1000 दिरहम लाजिम हो जाएंगे और तलाक वाक़े होगी। तो यहां खावंद की तरफ से जो फेल है वो तालीक है। खावंद की तरफ से क्या फेल हो रहा है? वो 1000 दिरहम के इवज तलाक को मुअल्लक कर रहा है औरत की कबूलियत से। औरत कबूल करेगी तो तलाक भी वाक़े हो जाएगी और 1000 दिरहम भी उस औरत पर लाजिम हो जाएंगे। तो खावंद की तरफ से क्या फेल हो रहा है? तालीक वाला, यानी यमीन है। तो खावंद का फेल जो है वो यमीन हुआ और औरत उसको कबूल कर रही है, यानी औरत शर्त को वजूद दे रही है और यमीन जो है वो भी जब एक दफा कर दी जाए तो वो लाजिम हो जाती है, उसे फसख नहीं किया जा सकता, खावंद उसे रुजुआ नहीं कर सकता। और इसी तरह शर्त एक दफा पाई जाए तो वहां भी रुजुआ नहीं हो सकता। मसलन देखो, देखो खावंद ने बीवी से कहा अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, बाद में खावंद कहते हैं नहीं नहीं मैं रुजू करता हूं अपने इस कौल से, मुझे बताइए क्या खावंद रुजू कर सकता है? नहीं, खावंद रुजू नहीं कर सकता। यमीन यानी तालीक भी लाजिम हो जाती है और कसम भी लाजिम हो जाती है। एक शख्स कसम खाता है वल्लाह मैं ये काम नहीं करूंगा, फिर बाद में कहता है नहीं नहीं मैं रुजू करता हूं अपनी इस कसम से, आप क्या फतवा देंगे कि क्या रुजू सही है या ये यमीन अब लाजिम हो गई? ये यमीन लाजिम हो गई, अब ये रुजू नहीं हो सकता। ये शख्स जिसने कसम खाई है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, ये शख्स ये वाला काम करेगा तो हानिस हो जाएगा क्योंकि कसम में रुजू नहीं। इसी तरह तालीक जो है उसको भी यमीन कहते हैं, वहां भी रुजू नहीं। खावर ने बीवी से कहा अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, अब बाद में रुजू करना चाहता है, नहीं भाई अब ये तालीक हो गई, औरत जब भी इस घर के अंदर जाएगी उसे तलाक हो जाएगी। मालूम हुआ यमीन के अंदर रुजू नहीं हो सकता, इसी तरह शर्त के अंदर भी रुजू नहीं हो सकता। यानी शर्त के वजूद में खावन ने क्या कहा था अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, औरत उस घर में चली गई, उसने शर्त को वजूद दे दिया, शर्त को वजूद दे दिया और जब शर्त पाई गई तो तलाक भी वाकई हो गई। लेकिन औरत बाद में कहती है नहीं नहीं मैं उस घर में गई थी, मैं अपने जाने से रुजू करती हूं, आप कहेंगे नहीं शर्त को जब एक दफा वजूद दे दिया अब वहां रुजू की कोई गुंजाइश और कोई सूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? यहां तो चलो बाकायदा एक फेल था ना, बाकायदा एक फेल था, फेल तो पाया गया, उसमें तो रुजू नहीं हो सकता। लेकिन अगर खावन ने तलाक को मुअल्लक किया है औरत के कबूल करने पर, तो औरत जब कबूल करेगी तो शर्त पाई गई, और किस तरह पाई गई शर्त? जुबान से औरत ने कहा मुझे कबूल है, तो यहां देखो सिर्फ जुबान से उसने कहा है और बाद में कहती है नहीं नहीं मैं रुजू करती हूं मुझे यह कबूल नहीं है। नहीं भाई एक दफा आपने शर्त को वजूद दे दिया अब रुजू की कोई सूरत नहीं, नहीं। तो हासिल कलाम क्या कि यमीन से भी रुजू नहीं हो सकता, यमीन वही कसम को भी शामिल है और तालीक को भी शामिल है, यमीन से भी रुजू नहीं हो सकता और शर्त को वजूद दे दिया जाए तो उससे भी रुजू नहीं हो सकता, या यूं कहो कि यमीन को एक दफा वजूद दे दिया जाए तो उसे फसख नहीं किया जा सकता, इसी तरह शर्त को एक दफा वजूद दे दिया जाए तो उसे फसख नहीं किया जा सकता। तो बात चल रही थी खावन ने तलाक को मुअल्लक किया है 1000 दिरहम की शर्त पर और साथ अपने लिए खियार रखा है या बीवी के लिए खियार रखा है, तो साहिबैन फरमाते हैं कि खियार बातिल है, यहां खियार हो ही नहीं सकता। हां औरत कबूल कर लेगी तो तलाक भी हो जाएगी और उस पर इवज भी लाजिम हो जाएगा। खियार क्यों नहीं हो सकता? कहते हैं वजह यह कि खावन का फेल है यमीन और औरत का फेल है शर्त को वजूद देना, तो ना यमीन के अंदर फसख हो सकता है और ना वजूद शर्त के अंदर फसख हो सकता है। बात समझ में आ रही है? यह खियार शर्त किस लिए होता है? अकद को फसख करने के लिए, और यहां ना खावन का फेल फसख को कबूल करता है और ना बीवी का फेल फसख को कबूल करता है, तो खियार तो दोनों सूरतों में बातिल है। हां अलबत्ता अगर औरत कबूल कर लेती है तो फिर तलाक भी हो जाएगी और उस पर माल भी लाजिम होगा, और अगर वो कबूल नहीं करती तो फिर तलाक भी नहीं और माल भी उस पर लाजिम नहीं। जबकि इमाम साहेब फरमाते हैं कि औरत जब कबूल कर ले तो तलाक वाकई हो जाएगी, अलबत्ता खावन ने खियार अपने लिए रखा हो तो वो खियार बातिल है, खावन खियार नहीं रख सकता क्योंकि खावन यमीन कर रहा है और खियार किस लिए होता है? फसख के लिए, और यमीन तो फसख का इहतमाल नहीं रखती। लेकिन अगर खियार बीवी के लिए है, खियार बीवी के लिए है, तो वो 3 दिन के अंदर इसको फसख कर सकती है। वजह यह कि यहां पर बीवी मुश्तरी के दर्जे में है, वो इवज देकर खावन से अपने आप को छुड़ा रही है और मुश्तरी को खियार हो सकता है, तो यहां बीवी को भी खियार हो सकता है। देखिए साहिब हिदायत और तफसील से बयान फरमाएंगे। ولو قال انت طالق على الف على اني بالخيار او على انك بالخيار ثلاثه ايام. صاحب ہدایہ نے یہ ثلاثه ایام کو صرف ایک دفعہ ذکر فرمایا آخر میں, اور تعلق اس کا دونوں سے بنتا ہے کہ اگر خاون نے کہا انت طالق على الف, تجھے طلاق ہے 1000 درہم کی شرط پر, على انی بالخیار اس شرط کے ساتھ کہ مجھے اختیار ہے, ثلاثۃ ایام کتنے دن کا, تین دن کا, او على انک بالخیار ثلاثۃ ایام یا اس شرط پر کہ تجھے اختیار ہے تین دن تک. فقبلت, عورت نے قبول کر لیا. تو دیکھو عورت قبول کرتی ہے کیونکہ معلق کیا ہے نا, عورت پر عوض ویسے تو نہیں آ سکتا, تو قبول کرنا تو ضروری ہے, ویسے طلاق نہیں ہوگی. فقبلت, عورت نے قبول کر لیا. فالخیار باطل اذا کان للزوج, تو خیار باطل ہوگا اگر وہ خاوند کے لیے تھا. یہ امام صاحب کے نزدیک ہے, طلاق واقع ہو گئی البتہ خیار باطل ہے. وہو جائز اذا کان للمرأۃ, اور یہ خیار جائز ہے جب یہ عورت کے لیے ہو. فإن ردت الخيار في الثلاث بطل, اگر عورت نے خیار کو رد کر دیا تین دن میں بطل, تو وہ طلاق باطل ہو جائے گی. وإن لم ترد طلقت, اور اگر عورت نے رد نہیں کیا تو عورت کو طلاق ہو گئی. ولزمها الألف, اور اس پر 1000 درہم لازم ہو گئے. وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ, اور یہ امام صاحب کے نزدیک ہے. وَقَالَ, اور صاحبین فرماتے ہیں, الْخِيَارُ بَاطِلٌ فِي الْوَجْهَيْنِ, کہ خیار باطل ہے دونوں صورتوں میں, یعنی چاہے خاوند کے لیے خیار ہو چاہے عورت کے لیے خیار ہو. وَالطَّلَاقُ وَاقِعٌ, اور عورت نے قبول کیا ہے تو کہتے ہیں طلاق واقع ہو جائے گی. وَعَلَيْهَا أَلْفُ دِرْهَمٍ, اور عورت پر 1000 درہم لازم ہوں گے, یہ جب قبول کر لے. اگر قبول نہ کرے تو پھر اس پر کچھ نہیں اور طلاق بھی نہیں ہوگی. اب وجہ کیا ہے دونوں صورتوں میں خیار کیوں باطل ہوتا ہے, وہ وجہ ذکر کر رہے ہیں, صاحبین کی دلیل چل رہی ہے. کہتے ہیں لِأَنَّ الْخِيَارَ لِلْفَسْقِ بَعْدَ الْإِنْعِقَادِ لَا لِلْمَنْعِ مِنَ الْإِنْعِقَادِ. بھئی میں نے آپ کو بتلایا یہ خیار شرط کس لیے ہوتا ہے, فسخ کے لیے ہوتا ہے, یعنی عقد ہو جاتا ہے تو بیع ہو گئی, اب بائع مشتری میں سے جس نے خیار رکھا ہے وہ اس بیع کو فسخ کر سکتا ہے. تو بیع ہو تو گئی البتہ لازم نہیں ہوئی, جس نے خیار رکھا ہے وہ اسے فسخ کر سکتا ہے. تو معلوم ہے یہ خیار فسخ کے لیے ہوتا ہے, اور عقد کے منعقد ہونے کے بعد اس کو فسخ کیا جاتا ہے. تو یہ خیار منعقد ہونے کو نہیں روکتا, منعقد ہو جائے گا وہ. توجہ ہے, خیار جب دونوں میں سے ایک مشتری یا بائیں نے خیار رکھا ہے تو بیع تو منعقد ہو جائے گی. تو یہ جو خیار شرط ہے یہ انعقاد عقد سے مانع نہیں ہوتا, بلکہ یہ انعقاد عقد کے بعد اس کو فسخ کرتا ہے. تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْخِيَارَ لِلْفَسْخِ بَعْدَ الْإِنْعِقَادِ, اس لیے کیونکہ یہ خیار شرط جو ہوتا ہے یہ فسخ کے لیے ہوتا ہے. بَعْدَ الْإِنْعِقَادِ, اس عقد کے منعقد ہونے کے بعد. لَا لِلْمَنْعِ مِنَ الْإِنْعِقَادِ, اور یہ انعقاد سے روکنے کے لیے نہیں ہوتا. وَالتَّصَرُّفَانِ لَا يَحْتَمِلَانِ الْفَسْخَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ, اور یہ دونوں تصرف جو ہیں, کون سے دو تصرف؟ ایک خاوند کا, خاوند نے کیا کیا تھا, خاوند نے تعلیق کی تھی, یعنی خاوند کا فعل یمین ہے, تعلیق کو بھی کیا کہتے ہیں, یمین. تو خاوند کا فعل یمین ہے, اور بیوی نے کیا کیا تھا, قبول کیا تھا, یعنی شرط کو وجود دیا تھا. تو یمین بھی فسخ کا احتمال نہیں رکھتی اور وجود شرط بھی فسخ کا احتمال نہیں رکھتا. تو کہتے ہیں وَالتَّصَرُّفَانِ لَا يَحْتَمِلَانِ الْفَسْخَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ, اور یہ دونوں تصرف جو ہیں یہ فسخ کا احتمال نہیں رکھتے. مِنَ الْجَانِبَيْنِ, دونوں جانب سے. تو جب یہ فسخ کا احتمال نہیں رکھتے تو یہ خیار باطل, کیونکہ خیار تو ہوتا ہی کس لیے ہے, فسخ کے لیے. تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ فِي جَانِبِهِ يَمِينٌ, اس لیے کیونکہ یہ خلع جو ہے خاوند کی جانب سے یمین ہے, کہ وہ طلاق کو معلق کر رہا ہے عوض پر کہ عورت قبول کرے. وَمِن جَانِبِهَا شَرْطُهَا, اور عورت کی جانب سے یہ یمین کی شرط ہے, इबारत समझ में आ रही है, अन्नहू फी जानिब ही यमीन, क्योंकि खुला खावन की जानिब से यमीन है और यमीन भी फसख को कबूल नहीं करती। व मिन जानिबिहा शर्तुहा, और औरत की जानिब से यह शर्त यमीन है और शर्त यमीन भी जब एक दफा पाई जाए तो फिर वो फसख को कबूल नहीं करती। वली अबी हनीफत रहमला, और इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नल खुलाफी जानिबिहा बी मंजिलतिल बेअ, कि खुला जो है वो औरत की जानिब से बेअ के दर्जे में है, यानी अक़्द मुआवजा है। हत्ता यसिहु रुजूउहा, भाई याद रखना यहां पर यह हत्ता नसब नहीं देगा, ये यसिहु को हम मरफू पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बतलाया कि हत्ता के नसब देने के लिए दो शर्तें हैं भाई। एक तो ये कि हत्ता का माबाद वो मुस्तकबिल होना चाहिए हत्ता के माकबल की तरफ निस्बत करते हुए, और दूसरी शर्त यह है कि वो हत्ता सबबियत का या गाया का फायदा दे। हत्ता सबबियत का फायदा दे यानी हत्ता का माकबल सबब बन रहा हो हत्ता के माबाद के लिए, या वो हत्ता गाया का फायदा दे यानी हत्ता का माबाद गाया बन रहा है हत्ता के माकबल के लिए, यानी हत्ता के माबाद पर हत्ता के माकबल की इंतहा हो रही हो, तो हत्ता के नसब देने के लिए ये दो शर्तें हैं और ये शर्तें यहां पूरी नहीं हैं, इसलिए यहां पर ये हत्ता नसब नहीं देगा। तो यहां यसिहु को मरफू पढ़ेंगे। कहते हैं हत्ता यसिहु रुजूउहा वला यतवक्कफु अला मा वरा अलमजलिसी, भाई औरत की जानिब से ये बेअ के दर्जे में है। हत्ता यसिहु रुजूउहा, यहां तक कि औरत की तरफ से रुजू भी सही है। वला यतवक्कफु अला मा वरा अलमजलिसी, और ये मौकूफ नहीं है मजलिस के माबाद तक। भाई देखिए ये तो सूरत थी, खावंद खुला को जिक्र कर रहा है और खावंद खुला को जिक्र करे तो ये यमीन है और यमीन से रुजू नहीं हो सकता, लेकिन अगर औरत खुला को जिक्र करे, वो खावंद के पास आई और आकर कहती है मुझसे खुला कर लो 1000 दिरहम के इवज पर, तो ये बीवी की तरफ से खुला आया है। तो याद रखो ये बीवी जो है मुश्तरी के दर्जे में है, यानी ये उसके बीवी की तरफ से देखा जाए तो ये अक़्द मुआवजा है ये खुला, और जब ये अक़्द मुआवजा है तो अक़्द मुआवजा जैसे बेअ है, बेअ के अंदर आपने एक शख्स से कहा कि ये किताब मैंने आपको 100 रुपए में बेच दी, तो उसके कबूल करने से पहले पहले आप रुजू कर सकते हैं, क्योंकि यह अक़्द मुआवजा है, ये जब तक दूसरा कबूल नहीं करेगा ये लाजिम नहीं। तो आपने अभी सिर्फ ईजाब किया कि ये किताब मैंने आपको 100 रुपए में बेच दी, अब वो दूसरा सोच रहा है कि मैं लूं या ना लूं, मैं खरीदूं या ना खरीदूं, इसी दौरान आपका इरादा बदल गया, आपने कहा नहीं भाई मैं अब किताब नहीं बेच रहा, अब वो कह भी दे मैंने कबूल किया, अब बेअ नहीं हुई क्योंकि आपने उसके कबूल से पहले ही रुजू कर लिया। तो खुला भी औरत की तरफ से बेअ के दर्जे में है यानी अक़्द मुआवजा है, तो लिहाजा अगर औरत ने आकर कहा मुझे 1000 दिरहम के इवज तलाक दे दो, तो खावन के कबूल करने से पहले ही औरत ने कह दिया कि नहीं मैं रुजू करती हूं, तो याद रखो औरत रुजू कर सकती है। खावंद कहता था तो खावंद की तरफ से खुला यमीन है, वो रुजू नहीं कर सकता, जबकि बीवी अगर आकर बात करती है तो बीवी की तरफ से ये क्या है, ये खुला बेअ के दर्जे में है, और बेअ के अंदर जब कोई ईजाब करता है तो वो दूसरे के कबूल से पहले रुजू कर सकता है, तो औरत भी रुजू कर सकती है। जब इसने औरत ने रुजू कर लिया, अब खावन कहता है मुझे कबूल है, नहीं नहीं अब आपके कबूल से बात नहीं बनेगी क्योंकि औरत रुजू कर चुकी है भाई। और नीज इजाब में जरूरी है कि कबूल उसी मजलिस में पाया जाए, लिहाजा औरत ने आकर इजाब किया है तो औरत रुजू भी कर सकती है, और अगर खावन ने कबूल करना है तो इसी मजलिस में कबूल करना पड़ेगा। खबर यहां से उठकर चला गया और बाद में कहता है मुझे कबूल है, नहीं भाई आपने कबूल करना था तो उसी मजलिस में कबूल करते, ईजाब के लिए कबूल उसी मजलिस में चाहिए भाई। तो कहते हैं ए वली अबी हनीफत रहमहुल्लाह, इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नल खुला फी जानिबिहा, के खुला जो है औरत की जानिब में भी मंजिलतिल बेअ, ये बेअ के दर्जे में है। हत्ता यसिहु रुजूउहा, यहां तक कि औरत का रुजू भी सही है। वला यतवक्कफु अला मा वराइल मजलिसी, और यहां तक कि ये मजलिस के माबाद पर मौकूफ नहीं है, यानी मजलिस गुजरेगी तो ये ईजाब भी खत्म हो जाएगा जो औरत ने किया था। फैसे हुश्तिरातुल खियार फी ही, तो लिहाजा इसके अंदर खियार की शर्त भी सही है। जब यह खुला औरत के लिए बेअ के दर्जे में है तो औरत के लिए खियार शर्त भी सही है भाई, ये माना है फैसे हुश्तिरातुल खियारी फी ही, तो इसके अंदर खियारे शर्त भी सही है यानी सौरत के लिए। अम्मा फी जानी भी ही यमीन उन, जबकि खुला खावन की जानिब में यमीन है। हत्ता ला यसिहु रुजूहू व यतवक्कफु अला मा वरा अल मजलिसी, यहां तक कि ये खावन का रुजू सही नहीं। खावन ने आकर कहा बीवी से कि मैं तुमसे खुला करता हूं 1000 दिरहम के इवज पर, फिर कहते नहीं नहीं मैं रुजो करता हूं। नहीं भाई, अब ये यमीन हो गई, तालीक हो गई, अब आप रुजो नहीं कर सकते। और नीज औरत का उसी मजलिस में कबूल करना भी जरूरी नहीं है, औरत बाद में भी कबूल कर सकती है, क्योंकि ये क्या है, यमीन है। तो कहते हैं अम्मा फी जानिब ही यमीन उन, और खावन की जानिब से खुला जो है वो यमीन है। हत्ता ला यसिहु रुजूहू, यहां तक कि खावन का इसे रुजो भी सही नहीं है। व यतवक्कफु अला मा वरा अल मजलिसी, और यहां तक कि ये खुला मौकूफ है अला मा वरा अल मजलिसी, मजलिस के मा बाद पर, मजलिस के बाद भी औरत कबूल कर सकती है। फर्क समझ में आ रहा है, खुला की बात अगर औरत करे तो ये बैग के दर्जे में है, वो उसी मजलिस में रुजो भी कर सकती है, और खावन ने कबूल भी करना है तो इसी मजलिस में करना होगा। और अगर खावन की तरफ से खुला की बात आती है तो ये यमीन है, खावन इसे रुजो भी नहीं कर सकता और ये मजलिस पर भी बंद नहीं है, मजलिस के बाद भी औरत कबूल कर सकती है। आगे देखिए, वला खियार फिल ऐमानी, और खियार नहीं होता फिल ऐमानी कस्मों में। ऐमान जमा है यमीन की, खावन की जानिब से खुला क्या है, यमीन, और यमीन के अंदर खियार नहीं होता। तालीक एक दफा कर ली जाए या कसम एक दफा खा ली जाए तो वो लाजिम हो जाती है। तो कहते हैं वला खियार फिल ऐमानी, और कस्मों के अंदर खियार नहीं होता। व जानिबुल अब्द फिल अताक मिसलु जानिबिहा फिल तलाकी, और गुलाम की जानिब आजादी में ये इसी औरत के मिसल है तलाक में, जैसे औरत तलाक ले रही है माल के बदले, तो खावन की तरफ से अगर बात हो तो वो यमीन, औरत की तरफ से बात हो तो ये बै के दर्जे में है। तवज्जो है, इसी तरह गुलाम की आजादी भी इसी तरह है। अगर आका ने गुलाम की आजादी की बात की है कि मैं तुम्हें आजाद करता हूं 1000 की शर्त पर, और मुझे इख्तियार होगा या तुम्हें इख्तियार होगा, अपना या गुलाम के खियार को जिक्र करता है, तो ये जो आजादी को जो इवज पर मुअल्लक किया है तो ये आका की तरफ से यमीन है, लिहाजा आका इसे रुजू भी नहीं कर सकता, और नीज ये मजलिस पर भी मौकूफ नहीं है, बाद में भी गुलाम इसको कबूल कर सकता है, और नीज ये यमीन है और यमीन तो फसख को कबूल नहीं करती, लिहाजा आका का अपने लिए खियार शर्त रखना बातिल है। जबकि इताक आला इवज ये गुलाम के लिए बै के दर्जे में है, जब बै के दर्जे में है तो गुलाम आकर अगर ये बात करता है कि आप मुझे आजाद कर दें 1000 दिरहम की शर्त पर, तो गुलाम इससे रुजो भी कर सकता है आका के कबूल करने से पहले पहले, और नीज अगर आका कबूल करना चाहता है तो उसी मजलिस में कबूल करना होगा। और जब ये गुलाम के लिए बै के दर्जे में है तो गुलाम के लिए खियार शर्त भी जायज है, लिहाजा वो मुद्दत के अंदर गुलाम को इख्तियार होगा, इस वक्त उसने कबूल कर लिया है लेकिन मुद्दत के अंदर वो रद्द कर सकता है, और इस सूरत में फिर वो जो इताक है वो भी बातिल हो जाएगा और गुलाम पर माल भी नहीं आएगा। और अगर उसने खियार इस्तेमाल न किया और मुद्दत गुजर गई, पहले इसने कबूल तो कर लिया था, तो लिहाजा इताक भी लाजिम हुआ और गुलाम पर माल भी लाजिम होगा। यह माना है वजानिबुल अब्द फिल अताक, और गुलाम की जानिब आजादी में मिसलु जानिबिहा फित तलाकी, यह इसी तरह है जैसे औरत की जानिब होती है फित तलाकी तलाक में। आगे देखिए, वमन قال لامرأته طلقتك امس على 1000 درهم فلم تقبلي فقالت قبلت فالقول قول الزوج। सूरत मसला यह, खावन ने बीवी से कहा तल्लक्तु की अम्सी अला अल्फी दिरहमिन फलम तकबली, फलम तकबली असल में क्या था, तकबलीना नून था आखिर में, ये लम की वजह से वो नून एराबी गिर गया। तो खावन ने बीवी से कहा कि गुजश्ता कल मैंने तुम्हें तलाक दी थी 1000 दिरहम की शर्त पर, तो तूने कबूल नहीं किया था। औरत जवाब में कहती है नहीं मैंने कबूल कर लिया था। तो कहते हैं इस सूरत में खावंद का कौल मोतबर है, औरत अगर साबित करना चाहती है कि मैंने कबूल कर लिया था तो फिर इस सूरत में उसको गवाह पेश करना पड़ेंगे, क्योंकि अलबय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा, खावंद मुनकिर है कबूल करने का और बीवी मुद्दईया है कबूल करने की, तो बीवी के जिम्मे गवाह और खावंद के जिम्मे कसम आएगी, और कसम आपने पढ़ा हमेशा इनकार पर खाई जाती है। बात क्या हुई, खावन ने कहा मैंने कल 1000 दिरहम की शर्त पर तुझे तलाक दी थी तो तूने कबूल नहीं किया था, औरत कहती है मैंने कबूल कर लिया था, तो खावन का कौल मोतबर है कसम के साथ। जबकि इसके मुकाबले में एक शख्स दूसरे आदमी को आकर कहता है कि तुझे मैंने यह गुलाम कल 1000 दिरहम के इवज बेच दिया था तो तूने कबूल नहीं किया था, तो वो कहते हैं नहीं मैंने कबूल कर लिया था, तो कहते हैं इस सूरत में मुश्तरी का कौल मुआतबर है जी। इस सूरत में मुश्तरी का कौल मुआतबर है। पिछली सूरत में बात किसने की, खावंद ने, और खावंद का कौल मुआतबर, और यहां पर बात की है जिस शख्स ने, उसका कौल नहीं मुआतबर बल्कि दूसरे शख्स का कौल मुआतबर है, वो जो मुश्तरी है भाई जी। तो क्या वजह, ये दोनों में फर्क क्यों है, तो वो फर्क आपको बतलाएंगे साहिब हिदायत। पहले देखिए भाई मसला पढ़ लें, कहते हैं वह मन खाल इमरती ही, और जिस शख्स ने अपनी बीवी से कहा तल्लक तू की अम्स आला अल्फी दिरहमिन फलम तक बली, के गुजश्ता कल मैंने तुझे तलाक दी थी 1000 दिरहम की शर्त पर, फलम तक बली तो तूने कबूल नहीं किया था, फकालत कबील तो औरत कहती है मैंने कबूल कर लिया था, फल कौल कौल उज़ौजी तो खावन का कौल मुअतबर है, व मन काल लिगैरिही और जिस शख्स ने किसी दूसरे से कहा बिअतु मिनका हादल अब्द भी अल्फी दिरहमिन अम्सी के मैंने तेरे हाथ बेच दिया था इस गुलाम को 1000 दिरहम के बदले में अम्सी गुज़श्ता कल, फलम तकबल तो तूने कबूल नहीं किया था, फकाल कबील तू तो वो शख्स कहते हैं नहीं मैंने कबूल कर लिया था, फल कौल कौल उल मुश्तरी तो वो कौल जो मुतबर है वो मुश्तरी का कौल है, वजहुल फर्की और फर्क की वजह, यानी दोनों मसलों में फर्क की वजह क्या है भाई। देखिए पहले मसले में खावन ने क्या कहा, मैंने कल तुम्हें 1000 दिरहम की शर्त पर तलाक दी थी तो तूने कबूल नहीं किया था, मालूम है खावन कहना चाहता है कल मैंने तलाक मुअल्लक की थी, कल मैंने तलाक मुअल्लक की थी और तूने कबूल नहीं किया था, तो खावंद ने अपना फेल यमीन जिक्र किया यानी तालीक जिक्र किया, और तालीक बगैर कबूल के हो सकती है, तालीक पाई गई है और कबूल नहीं पाया गया, तो खावन ने अपना क्या फेल जिक्र किया, तालीक, और तालीक में कबूल जरूरी है या बगैर कबूल के भी तालीक हो सकती है, बगैर कबूल के भी तालीक हो सकती है ना, हो सकता है औरत ने कबूल न किया हो, बात समझ में आ गई, तो खावन ने अपना फेल तालीक जिक्र किया है यानी यमीन जिक्र किया है, और यमीन बगैर कबूल के भी हो सकती है, वो तो दूसरे की मर्जी है वो कबूल करे या ना करे, लेकिन खावन की तरफ से तालीक हो गई, तो खावन यमीन का इकरार कर रहा है मैंने तालीक की थी कल, तो ये इकरार यमीन ये दलालत नहीं करता वजूद शर्त पर जी। कि शर्त भी पाई गई थी तूने कबूल भी कर लिया था, नहीं यमीन बगैर कबूल के हो सकती है भाई, नहीं तवज्जो मेरे ख्याल बात की तरफ, देखो खावन यमीन जिक्र कर रहा है तालीक, और खावन का काम है तालीक और उसको कबूल करना किसका काम है, बीवी, तो देखो तालीक के अंदर कबूल जरूरी नहीं है, हो सकता है औरत की मर्जी है वो कबूल करे या ना करे, तो तालीक बगैर कबूल के, ये यूं कहो तालीक हो और शर्त ना पाई जाए आगे, खावन ने बीवी से कहा अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, तो तालीक तो हो गई लेकिन हो सकता है वो औरत सारी उम्र उस घर में ना जाए, तो तालीक के साथ शर्त का पाया जाना जरूरी नहीं, तो खामन ने इकरार कर लिया कि कल मैंने तालीक की थी, कल मेरी तरफ से यमीन हुई थी, लेकिन इससे वजूद शर्त का इकरार लाजिम नहीं, लिहाजा खावन का कौल मुअतबर होगा। जबकि वो जो दूसरा मसला है उसमें वो शख्स क्या कहता है, कल मैंने ये गुलाम तुम्हें 1000 दिरहम के इवज बेचा था और तुमने कबूल नहीं किया था, भाई वजह यह कि यहां पर यह शख्स कह रहा है यह गुलाम मैंने कल तुम्हें 1000 दिरहम में बेचा था, बया का जिक्र कर रहा है, और बया किस चीज का नाम है, ईजाब और कबूल का, तो जब बया को जिक्र कर दिया मालूम हुआ ईजाब के साथ साथ कबूल भी आ गया, बगैर कबूल के तो बया नहीं हो सकती, तो गोया जब उसने कहा मैंने तुम्हें कल ये गुलाम 1000 दिरहम के अवज बेचा था, तो गोया उसने दूसरे के कबूल का भी इकरार कर लिया। और फिर आगे कहता है तूने कबूल नहीं किया था, अब यह उस कबूल से रुजू करना चाहता है। पहले कबूल का इकरार कर लिया, जब बियातू कहा मैंने बेचा था, तो बियातू किसे कहते हैं? बेचना, बेचना कैसे होगा जिसमें मुश्तरीका कबूल जरूरी है, उसके कबूल के बगैर तो बै ही नहीं हो सकती। तो जब पहले बै का इकरार कर लिया तो उसके जिमन में कबूल का भी इकरार कर लिया, और अब बाद में कहता है तूने कबूल नहीं किया था, तो अब उससे रुजू करना चाहता है। और एक दफा जब इसने कबूल का इकरार कर लिया है तो अब उससे रुजू नहीं कर सकता भाई। तो लिहाजा इस सूरत में मुश्तरी का कौल मोतबर है, मालूम है बै हो चुकी है भाई। तो कहते हैं वह वजहुल फर्की, और फर्क की वजह दोनों मसलों में यह है कि अन्ना तलाक बिल माली यमीन मिन जानिबी ही, के माल के बदले तलाक जो है यह यमीन होती है, मिन जानिबी ही खावंद की जानिब से। तो वो तलाक जो माल के बदले हो वो खावंद की तरफ से यमीन है, यानी तालीक है, क्योंकि औरत पर माल आएगा और औरत पर उसकी मर्जी के बगैर तो माल नहीं आ सकता, उसका कबूल करना भी शर्त है भाई। बात समझ में आ गई? तो लिहाजा माल के अवज जब भी खावन तलाक देता है वो दरअसल क्या होती है? यमीन होती है, जो औरत के कबूल पर मुनहसिर है भाई। तो लिहाजा कहते हैं अन्ना तलाक बिल माली यमीन मिन जानिबी ही, के माल के बदले तलाक देना ये खावन की तरफ से यमीन होती है, यानी जो औरत के कबूल पर मुनहसिर है। फल इकरार बिही ला यकूनु इकरारम बिशर्ती, तो यमीन का इकरार करना ये शर्त का इकरार नहीं है। कोई शख्स अगर यमीन का इकरार करता है कि कल मैंने ये वाली तालीक की थी, तो तालीक के साथ शर्त का वजूद जरूरी नहीं है। तो तालीक के इकरार से शर्त का इकरार लाजिम नहीं आया। तो कहते हैं फल इकरार उबी ही, तो यमीन का इकरार जो है ला यकूनु इकरारन बिशर्ती, वो शर्त के वजूद का इकरार नहीं है। लिसहती ही भी दूनी ही, इसलिए क्योंकि यमीन जो है बगैर वजूद शर्त के भी हो सकती है, यमीन है और शर्त अभी नहीं पाई गई। अमल बै फला यतिम्मु इल्ला बिल कबूली, बाकी बै जो है तो वो बगैर कबूल के पूरी नहीं होती। वल इकरार उबी ही इकरार उबी मा ला यतिम्मु इल्ला बिही, और एक चीज का इकरार करना यह उस चीज का भी इकरार है कि जिसके बगैर वो पूरी नहीं होती। बै का इकरार दरअसल दूसरे के कबूल का भी इकरार है। तो कहते हैं वल इकरार भी ही, और बै का इकरार करना इकरार बिमा ला यतिम्मु इल्ला बिही, ये इकरार है उस चीज का कि यह बै पूरी नहीं होती मगर उस चीज के साथ, यानी कबूल के साथ। फइनकारुहुल कबूल रुजू मिनहु, फइनकारुहुल कबूल रुजू मिनहु। अल कबूल मैंने इसको मंसूब पढ़ा, क्यों भाई? भाई देखिए अल कबूल मैंने इस पर नसब पढ़ा, वजह यह है कि दरअसल यह मफूल भी ही है इनकार मस्तर के लिए। फइनकारुहु उसका इनकार करना, किस चीज का इनकार करना? अल कबूल कबूल करने का, तो ये मफूल है। याद रखना ये जो मस्तर होते हैं ये भी अपने फेल जैसा अमल करते हैं, अपने फाइल को रफा देते हैं और अपने मफूल को नसब देते हैं। तो यहां ये फाइल की तरफ इसकी इजाफत हो रही है। फ इनकारुहु उसका इनकार करना, किस चीज का इसने इनकार किया है? अल कबूल कबूल करने का। फइनकारुहुल कबूला तो उस कहने वाले के कबूल का इनकार करना जो है रुजू मिनहु, ये उस कबूल से रुजू कर रहा है भाई, और एक दफा इकरार कर ले तो फिर रुजू नहीं हो सकता भाई। आगे देखिए काला वल मुबारातु कल खुलई किला हुमा युस्कितानी कुल हक्किन लिकुल वाहिदिन मिन अज़्ज़ौजैन अलल आखरी मिम्मा यतअल्लकु बिन निकाह इंद अबी हनीफा रहिमहुल्लाह। भाई याद रखो, एक है खुला, खुला के अंदर आप जानते हैं कि औरत पर माल लाजिम होता है और उसमें तलाक का लफ्ज जिक्र नहीं किया जाता, और इसी तरह एक मुबारात है। बारा युबारियो मुबारात का माना है, ये बाबे मुफाला है, जानिबैन से बराअत भाई, दोनों तरफ से बराअत, यानी मियां बीवी आपस में जुदाई इख्तियार करते हैं एक दूसरे को बरी करते हैं की शर्त पर, कि न मेरा तुम्हारे जिम्मे कोई हक है और न तुम्हारा मेरे जिम्मे कोई हक है तो इसको मुबारअत कहते हैं। क्या कहते हैं? मुबारअत कहते हैं। मसलन एक सूरत यह है ना कि खुला का लफ्ज जिक्र करें कि तुम मुझसे खुला कर लो 1000 की शर्त पर। एक सूरत यह है कि तलाक का लफ्ज जिक्र करते हैं कि तुम मुझे तलाक दे दे 1000 की शर्त पर। और एक सूरत यह है कि मुबारअत जिक्र करते हैं कि मुबारअत कर लो मेरे साथ 1000 की शर्त पर। तो इवज सब में आएगा, खुला में भी, तलाक अल इवज में भी और मुबारअत में भी। मुबारअत भाई ये बराअत से है। किससे है? बराअत से बाबे मुफाअला है। बराअत का माना है बरी करना, माफ करना। तो मुबारअत यानी दोनों जानिब से बराअत आए भाई, दोनों एक दूसरे के हुकूक माफ कर दें, इसको क्या कहते हैं? मुबारअत। खावंद बीवी के तमाम हुकूक माफ कर देता है और बीवी खावंद के तमाम हुकूक माफ कर देती है, यानी वो जो निकाह से मुताल्लिक हैं उसके अंदर मसलन खावंद के जिम्मे महर है या कोई नफका वगैरह है जो काजी ने मुकर्रर किया था और इसने अभी तक अदा नहीं किया, तो ये सारे हुकूक मुबारअत के अंदर माफ। तो मुबारअत के अंदर मियां बीवी आपस में माल के बदले जुदाई इख्तियार करते हैं और दोनों एक दूसरे के बरी होने की शर्त जिक्र करते हैं। न तुम्हारे जिम्मे मेरा कोई हक है, यानी जो कुछ तुम्हारे जिम्मे मेरा है वो तुम माफ, और जो कुछ तुम मेरे जिम्मे है तुम्हारा वो भी माफ। तो इस सूरत में दोनों के एक दूसरे पर जो हुकूक होते हैं वो साकित हो जाते हैं। मसलन खावंद ने बीवी का महर अदा करना है तो ये भी निकाह के हुकूक में से है, तो जब मुबारअत करेंगे तो खावंद के जिम्मे से महर साकित हो गया। या इसी तरह खावंद के जो हुकूक हैं बीवी के जिम्मे वो सारे भी क्या हो जाएंगे? साकित हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? इसको मुबारअत कहते हैं। इसी तरह याद रखो इमाम साहब फरमाते हैं खुला के अंदर भी मियां बीवी के एक दूसरे पर जितने हुकूक हैं सारे साकित हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ वो हुकूक साकित होंगे जिनका ताल्लुक निकाह से है, मुबारअत में भी और खुला में भी। और जिन हुकूक का ताल्लुक निकाह से नहीं है, मसलन किसी जमाने में इस औरत ने खावंद को 10 लाख रुपए कर्ज दिए थे तो वो साकित नहीं होंगे, या खावंद ने कोई चीज बीवी को बेची थी, बीवी कोई चीज मांग रही थी खावंद ने नहीं दी तो औरत ने कहा चलो मैं पैसे दे दूंगी मुझे बेच दो, तो अब उसके समन बीवी के जिम्मे हैं, तवज्जो है, लेकिन इसका ताल्लुक निकाह से नहीं है, ये नहीं साकित होंगे भाई। अगर एक दूसरे को कोई कर्ज दिया था या एक दूसरे को कोई चीज फरोख्त की थी तो वो पैसे साकित नहीं होंगे भाई। तो इमाम साहब के नजदीक खुला और मुबारअत इसमें दोनों के निकाह से मुतालिक जितने हुकूक होते हैं एक दूसरे पर वो सब साकित हो गए, और निकाह के अलावा जो हुकूक हैं वो साकित नहीं, यानी कर्ज या बैर वगैरह। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, खुला और मुबारअत में कोई हक किसी का साकित नहीं होगा सिवाय वो चीजें जो खुद जिक्र करें, जो खुद जिक्र करें तो सिर्फ वो हक साकित होगा, और अगर कुछ भी जिक्र नहीं किया तो कोई हक साकित नहीं है। महर अगर खावंद ने देना है वो उसको अदा करना पड़ेगा भाई। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह खुला के मसले में तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के साथ हैं और मुबारअत के मसले में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के साथ हैं। तो देखिए भाई, काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वल मुबारअत कल खुलई, के मुबारअत जो है ये खुला की तरह है। मालूम है दोनों का एक ही हुक्म है कि मुबारअत खुला की तरह है। किला हुमा युस्कितानी कुल्ल हक्किन लिकुल्ल वाहिदिन मिनज़ ज़ौजैन अलल आखरी, ये दोनों साकित कर देते हैं कुल्ल हक्किन हर ऐसा हक, लिकुल्ल वाहिदिन मिनज़ ज़ौजैन अलल आखरी, जो मियां बीवी में से हर एक का दूसरे पर होता है। ये दोनों हर उस हक को साकित कर देते हैं जो मियां बीवी में से एक का दूसरे पर होता है। मिम्मा यतअल्लक़ु बिन निकाही, जिनका ताल्लुक निकाह से होता है, वो हुकूक जिनका ताल्लुक निकाह से होता है। इंद अबी हनीफा रहमतुल्लाह, इमाम साहिब के नजदीक भाई खावंद के जिम्मे मसलन महर था वो भी साकित हो जाएगा, और साबका अगर कुछ नफका खावंद के जिम्मे बाकी है, मसलन काजी ने फैसला किया था अब खावंद उसके मुताबिक नफका अदा कर रहा है लेकिन कुछ अरसा उसने अदा नहीं किया, तो वो ये नफका वगैरह ये सब चीजें जो निकाह से मुतालिक हैं साकित हो जाएंगी। लेकिन याद रखो मुबारअत और खुला की सूरत में तलाक बाइन आ जाएगी, तलाक बाइन, और तलाक बाइन के बाद इद्दत आती है और इद्दत का नफका भी खावंद के जिम्मे होता है और सुकना भी खावंद के जिम्मे होता है, तो वो नहीं साकित होंगे भाई, क्योंकि वो तो मुस्तकबिल की चीज है, वो तो अभी आया ही नहीं। माजी के जितने हुकूक हैं एक दूसरे पर वो सारे साकित हो जाएंगे खुला में भी और मुबारकत में भी, लेकिन जो आगे इद्दत का नफका और सुकना है वो साकित नहीं, इल्ला ये कि उसको बाकायदा जिक्र कर दिया जाए, इल्ला ये कि उसको बाकायदा जिक्र कर दिया जाए। मसा औरत कहती है इद्दत का नफका भी मैं तुमसे नहीं लूंगी और इद्दत का सुकना, मसलन सुकना खावंद का किराए का घर है भाई, क्या है किराए का घर है, और वो सुकना उसका खर्चा भी मैं तुमसे नहीं लूंगी, मैं खुद अदा कर दूंगी वो खर्चा, तो फिर इस सूरत में वो खावंद को बरी कर सकती है। हां, उस घर में ही इद्दत गुजारना पड़ेगी, घर से निकलना उसके लिए जायज नहीं है, लेकिन उसके खर्चे से वो खावंद को बरी कर सकती है भाई। तो क्या बात हुई कि मुबारात और खुला के अंदर मियां बीवी के जितने साबका हुकूक हैं निकाह से मुतालिक वो साकित हो जाएंगे, लेकिन मुस्तकबिल जो इद्दत का नफका और सुकना है वो साकित नहीं होगा, और अलबत्ता अगर उसको बाकायदा सराहतन जिक्र कर दिया जाए फिर वो भी साकित हो जाएगा। और नीज यहां एक और कीमती बात भी याद रखना, ये खुला और मुबारात के अंदर इमाम साहब फरमाते हैं सारे हुकूक साकित हो जाएंगे, तलाक आला इवज नहीं। अगर तलाक जिक्र की कि मैं तुझे तलाक देता हूं 1000 की शर्त पर, तो फिर इस सूरत में कोई हक किसी के से साकित नहीं है, जो हुकूक हैं किसी के जिम्मे वो उसको अदा करने पड़ेंगे भाई। खावन ने महर देना है तो वो महर उसको देना पड़ेगा भाई। तो ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक है कि मुबारात और खुला से तमाम हुकूक साकित हो जाते हैं निकाह के। وقال محمد رحمه الله تعالى لا يسقط فيه ما الا ما سمياه, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इन दोनों में कोई चीज साकित नहीं होती, यानी मुबारात और खुला में कोई चीज साकित नहीं होती, इल्ला मा सम्मयाहू, मगर वो चीज जिसको ये दोनों जिक्र करें सिर्फ वो साकित होगी। वह अबू यूसुफ रहमहुल्लाह माअहु फिल खुलाई, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह खुला के अंदर इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह के साथ हैं। वह मा अबी हनीफा रहमहुल्लाह फिल मुबारअती, और वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के साथ हैं मुबारात में। लि मुहम्मदिन रहमहुल्लाह, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की दलील ये है कि अन हादिही मुआवजत, उनके ये अक्द मुआवजा है, ये मुबारात और खुला ये मुआवजा हैं। व फिल मुआवजात युअतबरुल मशरूत ला गैरुहू, और मुआवजात के अंदर मशरूत ही मुअतबर होता है उसके अलावा नहीं, वो चीजें जिनकी शर्त लगाई गई है वही मुअतबर हैं और नहीं। तो लिहाजा अगर शर्त लगाएंगे जिन जिन हुकूक के साकित करने की वो साकित होंगे बाकी साकित नहीं। तो कहते हैं वफिल मुआवजात युअतबरुल मशरूत ला गैरुहू, और मुआवजात के अंदर जिस चीज की शर्त लगाई जाए वो मुअतबर होता है, ला गैरुहू न के उसके अलावा। वली अबी यूसुफ रहमहुल्लाह अन्नल मुबारअत मुफाअलतुम मिनल बराअती, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह की दलील यह है कि अन्नल मुबारअत मुफाअलतुम मिनल बराअती, कि मुबारअत ये बाबे मुफाअला है मिनल बराअती, किससे बराअत से। फतक तजीहा मिनल जानिबैनी, तो ये बराअत का तकाजा करता है दोनों जानिब से, कि खावन बीवी के हुकूक से बरी और बीवी खावन के हुकूक से बरी। व अन्नहु मुतलकुन, और ये मुबारात तो मुतलक है जी। मुतलक है, ये तो तकाजा करता है हर तरह के हुकूक साकित हो जाएं, चाहे निकाह वाले हैं चाहे गैरे निकाह वाले हैं, दोनों ने एक दूसरे से कोई कर्ज लिया था या कोई बेउशीरा आपस में हुई थी, तो ये तो मुबारात तो तकाजा करता है हर हक साकित होना चाहिए, लेकिन हमने इसको खास कर दिया सिर्फ किसके साथ, निकाह के साथ, कि निकाह के हुकूक साकित होंगे बाकी हुकूक साकित नहीं। उसकी क्या वजह है, वजह यह कि यहां पर झगड़ा सिर्फ निकाह के मसले में चल रहा है मियां बीवी में, मियां बीवी में यहां झगड़ा सिर्फ निकाह के मसले में चल रहा है, खुशगवार जिंदगी गुजारना अब मुश्किल हो गया है, तो लिहाजा सिर्फ निकाह के हुकूक साकित होंगे, निकाह के अलावा बाकी हुकूक साकित नहीं होंगे। वह अन्नहु मुतलकुन, और ये बराअत ये तो मुतलक है, लेकिन कैयद ना हो भी हुकूक इन निकाह ही, लेकिन हमने इसको हुकूक निकाह के साथ मुकैद कर दिया। लि दलालतिल गरजी, इसलिए क्योंकि गरज इस पर दलालत कर रही है, यहां क्या मकसद है मुबारअत का? निकाह के झगड़े को खत्म करना है। मुबारअत किस लिए की जा रही है? निकाह के झगड़े को खत्म करने के लिए, लिहाजा सिर्फ निकाह के हुकूक साकित होंगे। तो कहते हैं वह अन्नहु मुतलकुन, यह मुतलक है, कैदनाहु बि हुकूक निकाह, हमने इसको मुकैद कर दिया हुकूक निकाह के साथ, लिदलालतिल गरज, गरज के दलालत करने की वजह से कि यहां गरज जो है वह निकाह के झगड़े को खत्म करना है। अम्मल खुलउ फमुक्तज़ाहु लिनखिलाउ, बाकी खुला जो है तो उसका मुक्तज़ा इनखिलाउ है। इनखिलाउ, खुला का माना होता है अलग होना, अलग होना। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं खुला के अंदर हुकूक साकित नहीं होंगे, मुबारअत में हुकूक साकित होंगे निकाह वाले, और जबकि खुला में हुकूक साकित नहीं। वो फरमाते हैं खुला का माना है जुदा होना, जुदा होना, और यहां पर जब निकाह टूट गया तो बस जुदाई आ गई, अब यह जुदाई काफी है, बाकी अहकाम में जुदा नहीं किया जाएगा भाई। तो कहते हैं अम्मल खुलउ फमुक्तज़ाहु लिनखिलाउ, बाकी खुला जो है तो उसका तकाजा इनखिलाउ है, यानी जुदा होना है। वकद हसल फी नक्ज़िन निकाही, और तहकीक ये हासिल हो गया, ये जुदा होना हासिल हो गया, फी नक्ज़िन निकाही, निकाह के तोड़ने में, निकाह को तोड़कर जुदाई को हासिल कर लिया गया। वला जरूरत इलन किताइल अहकामी, और कोई जरूरत नहीं है अहकाम के काटने की, एक दूसरे के हकूक एक दूसरे से साकित करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि खुला का तकाजा यह है कि दोनों में जुदाई आ जाए, और जुदाई आ गई तो अब बाकी अहकाम को मुनकते करने की कोई हाजत नहीं है। वली अबी हनीफा रहमहुल्लाह, और इमाम साहब की दलील यह है कि अनल खुलायुम बी ओ अनिल फसली, के खुला का लफ्ज़ खबर देता है जुदाई की, खुला का लफ्ज़ खबर देता है जुदाई की। अरबी में कहते हैं खलातु नालैया, मैंने अपने जूते उतार दिए, या खलातु सौबी, मैंने अपना कपड़ा उतार दिया। तो जब जूते उतार दिए मालूम आप उससे अलग हो गए, जब कपड़े उतार दिए मालूम हो वो उससे अलग हो गया। तो खुला के अंदर जुदाई वाला माना है, तो खुला जुदाई पर दलालत करता है, और खुला मुतलक है, जिस तरह मुबारअत मुतलक है इसी तरह खुला भी मुतलक है, और खुला का माना है जुदा होना। तो यहां पर भी कामिल जुदाई तब आएगी जब तलाक के साथ साथ निकाह के हुकूक भी एक दूसरे से साकित हो जाएं, फिर कामिल तौर पर जुदाई आ गई। तो लिहाजा चाहे मुबारअत हो चाहे खुला, ये जब मुतलक है तो दोनों के एक दूसरे पर तमाम हुकूक साकित हो जाएंगे भाई। कहते हैं वली अबी हनीफा रहमतुल्लाह, और इमाम साहब की दलील यह है कि अनल खुलायुम बी ओ अनिल फसली, के खुला जो है वो खबर देता है जुदाई की। वमिन हु खल उन नाल व खल उल अमली, और इसी से खल उन नाल जूते का उतारना, व खल उल अमल और अमल से अलग होना। खलातुल अमला, मैंने वो वाला अमल छोड़ दिया, यानी मैं उससे जुदा हो गया। तो कहते हैं वमीन हु खल उन नाली व खल उल अमली, और इसी खुला से है जूते से अलग होना और अमल से अलग होना। वह हुआ मुतलकुन, और खुला का लफ्ज मुतलक है, कल मुबारअती, जैसे कि मुबारअत का लफ्ज मुतलक था। फयुअमलु बि इतलाक़ ही माफिन निकाही व अहकामी व हुकूकी, तो इन दोनों को अपने इतलाक के साथ अमल दिया जाएगा, निकाह में भी व अहकाम ही और निकाह के अहकाम में भी, व हुकूक ही और निकाह के हुकूक में भी। तो लिहाजा मुबारअत में भी बराअत मुतलक थी और खुला के अंदर भी जुदाई मुतलक है, तो लिहाजा यहां पूरे तौर पर जुदाई आएगी, यानी हुकूक और अहकाम भी मुनकते हो जाएंगे। बात समझ में आ गई भाई? चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, अल्लाह आलम बिहकीकतिल कलाम।